Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dashashloki, pahle shlok, jiske avtaran, siddhant bindu ke anusar, श्रवण कर रहे हैं आप लोग तो चिदभाष्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानाम अपि देहेन्द्रिय मनसाम प्रतिभासतो अहंकारास्पदत्वेन तत् अविवेकात्। मैं जो है ये तो अपने आप प्रकाशित होने वाला है, अहंकारास्पद होने के कारण, और इदंकारास्पद जो है वो सब के सब चिदभाष्य है, चेतन के द्वारा प्रकाशित होने के योग्य है। तो एक हो गया दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला और एक हो गया स्वयं प्रकाशित होने वाला, दोनों में भला एकता कैसे हो सकती है? ये जो दोनों एक हो गए तद अविवेकात्, अविवेक होने के कारण, विचार न करने के कारण। आत्मा अनात्मा कभी एक हो नहीं सकते, अंधकार प्रकाश कभी एक हो नहीं सकते, सुस्पष्ट है। तेन च शुद्धिप्यात्मनि दुखित्वादि अभिमानात्। अब इसके निवृत्ति के लिए कह दिया शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्ते हे। ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान दोनों अपनी जगह ठीक है, केवल आत्मा को जाना तो आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान, और केवल ब्रह्म को जाना तो नाम पड़ा ब्रह्मज्ञान। धर्म को जानोगे धर्मज्ञान, कर्म को जानोगे कर्मज्ञान। अब यहां तो जोड़ दिया ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान भी कह सकते हैं, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होना। आगे वो महावाक्य आना ही है, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि। जो व्यापक परमात्मा है वह अभी हम लोगों को कैसा दिख रहा है? हम लोग व्यापक परमात्मा को कैसा मानते, अपने से दूर परिच्छिन्न तो है ही नहीं ना, व्यापक पहले बोल दिया, व्यापक मतलब अपरिच्छिन्न होता है। तो जो व्यापक है शास्त्र सुनकर के पता लगा, मालूम भी होता है कि भगवान कहीं एक जगह नहीं बैठे हैं, वह तो सर्वत्र है। आप बोलते हो ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओम तो संस्कृत के शब्द और नी गुजराती जोड़ दिया लगता है, ओमनी प्रेजेंट छे, ओम के प्रेजेंट है क्या है? प्रेजेंटेशन एवरीवेयर ऑलवेज, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो ना हो। अब व्यापक परमात्मा को अपने शरीर में आप किस रूप में अनुभव कर रहे हो? जो व्यापक है इस परिच्छिन्न उपाधि शरीर के माध्यम से उस व्यापक परमात्मा का जब अनुभव करते हैं तो कैसा लगता है कि वह परिच्छिन्न है? परिच्छिन्न उपाधि से सोचोगे तो व्यापक लगने लगा परिच्छिन्न सा, व्यापक लग रहा है परोक्ष सा, अपरोक्ष भी नहीं है अभी, कैसा है? परोक्ष। और जो ये शरीर के साथ हम दिख रहे हैं, दिन रात बोलते हो मैं, ये कैसा लग रहा है? अपरोक्ष। लेकिन ये व्यापक लग रहा है नहीं। क्या बात है, आप लोग सवेरे सवेरे समाधि में चले गए। हाँ, थोड़ा बोल बोल के बीच में प्रमाण देते रहो कि आप जग रहे हो। शरीर रूपी उपाधि में आने के बाद जैसे आकाश कभी भी परिच्छिन्न नहीं होता, लेकिन घड़े के आकाश को तो घटाकाश ही कहा जाता है। घड़े से बाहर का आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, दोनों है तो एक ही। इसके बीच में भेद पैदा करने वाला कौन है? घड़ा। ये उपाधिकृत जो भेद होता है ना, इसको हटाना है। अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य कौन सा है? इसको बोलते हैं अनुभवात्मक महावाक्य। तत्त्वमसि महावाक्य से गुरु उपदेश देते हैं और याद कराते हैं कि तुम वही हो, इसलिए उस महावाक्य को स्मरणात्मक महावाक्य बोलते हैं, याद दिलाने वाला महावाक्य। और जब याद आ गया तब आप बोलते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उससे पहले आप क्या मान रहे थे? मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं। जब गुरु ने उपदेश दिया, मालूम पड़ गया, तत्त्वमसि महावाक्य का खूब विचार हुआ, क्योंकि उस वाक्य की ऐसी सामर्थ्य है कि जिससे जीवात्मा को मैं परमात्मा हूं ऐसा बोध हो जाता है। उस वाक्य में ऐसी शक्ति है, जैसे कोई कहे कि किसी के आवाज देने से नींद क्यों खुलती है, तो आवाज की ऐसी शक्ति है कि सोते हुए व्यक्ति को उठा देती है। इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो कल परसों से आप लोग बार बार यही सुन रहे हो कि जिस अज्ञान को हटाने की बात की जा रही है, उसको हटाना है तो शास्त्रीयेण ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः, ऐसा आचार्य कह रहे मधुसूदन सरस्वती जी। और बात यह है भी, जिस मन से परमात्मा को अभी हम जान नहीं पाते, जिस मन की वहां तक पहुंच नहीं है, उसी मन में इस प्रकार की वृत्ति बनती है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि में जब इसको, जैसे तत्त्वमसि महावाक्य का मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों क्या क्या है? तत् त्वम असि, तत् का अर्थ होता है सर्वज्ञत्व, परोक्षत्व, सर्वशक्तिमत्व, विशिष्ट चेतन, जो ईश्वर, वह तत् शब्द से कहा जाता है। और त्वम से अल्पज्ञत्व, अपरोक्षत्व, अल्पशक्तिमत्व, जो जो जीव के धर्म है वे सारे के सारे त्वम पद से कहलाते हैं। त्वम पद का ये मुख्य अर्थ है और तत्पद का मुख्य अर्थ हो गया ईश्वर, वह भी विशिष्ट चेतन है, ये भी विशिष्ट चेतन है। जिन विशेषणों से युक्त हो, उस विशेषण के कारण ही उसको विशिष्ट कहा जाता है। अभी जो हम लोग परमात्मा से अपने को अलग मानते हैं, तो हम लोगों ने भी किसको महत्व दिया? विशेषण को ही महत्व दिया। पंचदशी आदि पढ़ते हो, कैसा है वो? निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता, ऐसा वहां कहा है। ये विकल्प निर्विकल्प आदि भी समझने समझाने के लिए है। केवल जो किसी भी विशेषण से रहित है, ऐसा जो शुद्ध चेतन, जब विशेषणों से युक्त हो गया तो वह विशिष्ट चेतन जीव, और विशिष्ट चेतन हो गया ईश्वर। इसको बोलते हैं अब भागत त्याग लक्षणा करो, जिसको हम जहद और अजहद लक्षणा भी बोलते हैं। संस्कृत में जहद का मतलब होता है छोड़ना और अजहद का मतलब होता है पकड़ना, नहीं छोड़ना। ओहाक त्यागे धातु से जहद शब्द की निष्पत्ति होती है। ओहाक त्यागे, जैसे वह परमात्मा श्रुति आदि के अनुसार उसका प्रतिपादन होता है तो कहते हैं वह आत्मतत्व कैसा है, हेय उपादेय रहित तत्वम, हेय और उपादेय धर्मों से जो रहित है। हेय का मतलब त्यागने योग्य और उपादेय का मतलब ग्रहण करने के योग्य। सोना मत, नींद आएगी तो गड़बड़ होगा। चेतन तो दोनों जगह है ही, चेतन को तो रखना ही है। जो सर्वज्ञत्व परोक्षत्व सर्वशक्तिमत्व विशिष्ट चेतन जो है वो ईश्वर है, अल्पज्ञत्व अपरोक्षत्व और अल्पशक्तिमत्व विशिष्ट चेतन जो जीव, जीव और ईश्वर को भेद करने वाले यही विशेषण हैं। इन विशेषणों को आप हटा दीजिए, केवल शुद्ध चेतन को रखिए, इसी को बोलते हैं अखंडार्थ बोध, अखंड ज्ञान। दृष्टांत दे दिया सोयम देवदत्त इति, वह देवदत्त यही है, यह देवदत्त वही है, यह देवदत्त क्या है, वही है, तुम वही हो। पहले भी ये क्या थे, कल दृष्टांत दिया, चाहे चलता हुआ सांप चाहे कुंडली मार करके बैठा हुआ सांप, है तो सांप ही। जब वह परमात्मा अविद्या विशिष्ट होता है उस समय उसी का नाम जीव पड़ जाता है। जब जो जो उपाधि ग्रहण करते चले जाते हैं तत्त उपाधियों से युक्त होने के कारण वैसा वैसा उसका नाम पड़ जाता है। उस परमात्मा की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, अपने नाम रूप के माध्यम से भी वह अपने आप को ही बतलाना चाहता है। भले ही हम नाम रूप को मिथ्या कह देवे, नाम रूप को हटाने की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक परमेश्वर की दया का उसके जो है उसकी पराकाष्ठा है कि अपने नाम रूप को व्यक्त करके उससे वह अपने स्वरूप को ही बताने के लिए निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार में अपने को प्रकट करता है। ये उनकी क्या है, दया कृपा। जैसे वेदों के जितने भी मंत्र हैं, एक एक मंत्र से परमात्मा, यदि वेद के अर्थ को जानोगे तो उस मंत्र के ऋषि अलग होंगे, उस मंत्र के देवता अलग होंगे, और एक एक मंत्रों से आप केवल एक एक देवताओं का ही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। लेकिन जब संपूर्ण वेद के मंत्र के अर्थ को आप एक साथ जानना चाहोगे उस समय केवल परमात्मा का ही ज्ञान होता है। ध्यान देना, क्या सुना आपने, एक एक मंत्रों से होने वाला जो ज्ञान और संपूर्ण मंत्रों को मिला करके होने वाले ज्ञान में क्या अंतर है, वो जो जिस मंत्र के जो देवता होंगे केवल उस मंत्र से उसी देवता का ज्ञान होगा, और जब संपूर्ण वेद के मंत्रों के अर्थ के रूप में आप जानना चाहोगे तब एकमात्र परमात्मा का ज्ञान होगा। इसका उदाहरण है, कथा प्रसिद्ध है, आप लोग कई बार सुने हुए भी हो। दक्षिण भारत में जाओ ना, जहां चिदंबरम, चिदंबरम में जो भगवान की नटराज मूर्ति है वो तो कौन सी मूर्ति है मालूम है, शिव जी की मूर्ति तो है, किसने बनाई है वो, दक्षिण भारत में ये पांच तत्वों के आधार पर ये पांच लिंग है। तिरुपति बालाजी के पास जाओगे वहां एक काल हस्तीश्वर महादेव का मंदिर है जो वायु लिंग है, बहुत सुंदर है, जाके दर्शन करना चाहिए। लोग तिरुपति जाते हैं जिन्हें पता नहीं होता वहां नहीं जा पाते, वहां से पास में ही है। तिरुपति जाना तो काल हस्तीश्वर जरूर जाना, उसकी पौराणिक कथा भी है, शिव पुराण आदि में भी उसका उपाख्यान आता है। ये शायद मुझे लगता है आंध्रा में है, तो चेन्नई का बॉर्डर ही, चेन्नई से 100 किलोमीटर है करीब तिरुपति बालाजी। भाई एयर जाओगे तो चेन्नई से जाना पड़ेगा, और ट्रेन से जाओगे तो रेणीगुंटा वहां उतरते हैं लोग, और फिर वहां से जाते हैं। तो कालहस्तीश्वर वहां पास में। जललिंग है कुंभकोणम, ये तमिलनाडु में ही है। पृथ्वीलिंग शिव कांची, कांचीपुरम में। पृथ्वीलिंग, जललिंग, वायुलिंग, तेजलिंग जो है रमण महर्षि का जहां आश्रम है, अग्निलिंग है वो तिरुवन्नामलई, अरुणाचल भी बोलते उसी को, हाँ अरुणाचलम तिरुवन्नामलई, वहां पर अग्निलिंग है। और चिदंबरम जो है ये आकाश लिंग है। पांच तत्व के आधार पर दक्षिण भारत की ये पांच ज्योतिर्लिंग है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग से अलग है। भारत के तो 12 ज्योतिर्लिंग में दक्षिण में रामेश्वरम आता है, लेकिन पांच तत्व के आधार पर ये पांच लिंग है, जिसमें आकाश लिंग चिदंबरम। तो जो नटराज की मूर्ति है, जिनको भगवान का दर्शन करना आता है उनकी बात बता रहा, जिनको नहीं आता वो तो नहीं ही आता है। नटराज की मूर्ति का आप ठीक ठीक दर्शन करो तो उसमें भगवान के उत्पत्ति, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह मुद्रा दिखाई देती है। सृष्टि करने की मुद्रा, सृष्टि चलाने की मुद्रा, सृष्टि के मिटाने की मुद्रा, साथ ही तिरोधान छिपने की मुद्रा और अनुग्रह प्रकट होने, भक्तों के ऊपर कृपा करने की मुद्रा, ये उस नटराज के मूर्ति में दर्शन होते हैं। सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन जिसको आता है उसी को दिखाई देते, नहीं तो बस लगता है कि भगवान टांग उठा करके इसे खड़े हैं। महीपादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम, भगवान जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में सायं को जब प्रसन्न होते हैं, उस समय अपने मुद्रा से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं, ये उसमें लीला की है उन्होंने। ऋषि मुनि अलग अलग मंत्रों से बहुत वर्षों तक अनुष्ठान करते रहे, जब भी देख रहे हैं जिस मंत्र को ले रहे हैं उसके देवता अलग हैं, उसके ऋषि अलग हैं। तो एक बार उन सब ने विचार किया कि सारे वेद के मंत्रों का एक साथ प्रयोग करके कोई यज्ञ का आयोजन किया जाए, और उस यज्ञ में संपूर्ण वेद मंत्रों से आहुति दी, उस आहुति के प्रभाव से ही यज्ञ कुंड से जो प्रकट हुए वे वही नटराज मूर्ति है, तो किसी ने बनाया नहीं है, याद रहेगा ना। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से आहुति देने पर जो मुद्रा बना करके भगवान प्रकट हुए अग्नि कुंड से, वह नाम पड़ा नटराज। नटराज मूर्ति भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पाणिनि जी, पतंजलि जी, जो जिसके योग्य थे, जैसे अधिकारी थे, उन सब के लिए भगवान ने तो केवल नृत्य किया। फिल्म तो सब देखते हैं, लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा वो समझते हैं। प्रज्ञापराध एव ऐसा दुखम इति, सिनेमा की बात छोड़ो, एक पंडित जी बहुत वर्षों तक महाभारत की कथा सुनाए कहीं, अब उन्होंने सोचा इतना परिश्रम करके सुनाया तो आखिर लोगों ने क्या समझा, जरा पता भी कर लेते हैं। कंस ने क्या किया था, बाप को कैद करके राज्य ले लिया था। दुर्योधन ने क्या किया, अपने भाइयों के साथ जो बर्ताव किया। द्रौपदी के 5 पति, अब जो जो जिसके अधिकारी थे उन्होंने कथा सुनने के बाद अपना अपना अनुभव बताया। लड़का कहने लगा, मैं तो अभी तक सोचता था कि पिताजी का आदर सम्मान करना चाहिए, अब तो इनसे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। द्रौपदी के चरित्र सुन के वो बोलती है, मैं तो सोचती थी कि पतिव्रता रहना चाहिए, अब तो मामला दूसरा है। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, मैंने कथा क्या सुनाई, लगता है सबको बिगाड़ दिया। कान पकड़ा कि अब इसके बाद जीवन में कभी कथा नहीं करूंगा। कथा करने वाला बोलने वाला तो बोल जाता है, लेकिन समझने वाले अपने अपने बुद्धि के अनुसार ही समझ पाते हैं। फिल्म तो सब देखते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो जो भी हो, लेकिन उससे आप अभिप्राय क्या निकालते हो, जैसी आपके अंदर सामर्थ्य योग्यता है उसके अनुसार ही तो निकालोगे, और क्या करोगे। तो वहां पर भी भगवान शंकर नृत्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिसके योग्य थे उन्होंने उसके अनुसार ही उसी में से अर्थ निकाला। भगवान ने तो केवल नृत्य किया, नटराज है वो। और ये श्लोक आप सुनते हो, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्तावसाने नटराज राजो, भगवान कैसे नटराज हैं, नृत्य करने में बड़े कुशल हैं, बड़े बड़े नटों को भी जो पीछे छोड़ देवे इसलिए वो नटराज है। नटराज राजम, ननाद बजाया, ढक्काम डमरू कितने बार, नौ बार, और पंच 5 बार, कितने हो गए 14। बजाया 9 और 5 14 बार, लेकिन उसमें से पतंजलि को तो योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को ब्रह्म ज्ञान हुआ, और पाणिनि जी ने 14 सूत्र सुना। बजा तो डमरू और सुनाई क्या दिया, ऐ उण रील रिक ए ओं ऐ औच। आप लोग ABCD सीख रहे हो, ऐ उण रील रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घड़ धस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ च ट तब कपय श स सर हल। ये 14 सूत्र है।